नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के विशेष शिविर का शुभारंभ किया। उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, राष्ट्रीय राजधानी में खादी के माध्यम से युवाओं को रोजगार, कौशल और आत्मनिर्भरता का नया आयाम मिल रहा है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट मामले में एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आज नई दिल्ली में समापन और सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से दिव्यांगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी से निपटने के लिए कड़े कानून बनाने को कहा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के विशेष शिविर का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये अभियान मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के लिए राहत और सम्मान का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से वर्षों पुरानी अघोषित परिसंपत्तियां आज अपने असली हकदारों तक पहुंचने जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने आम परिवारों की इस चिंता को समझकर अघोषित पूंजी को तेज, पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से लोगों तक पहुंचाने का मार्ग तैयार किया है।
शानदार पहल है ये, मेरी पूंजी मेरा अधिकार। ऐसी पहल अपने आप में बहुत अनोखी है और जनता के हित की है कि जनता का पैसा, उसकी पूंजी उसको मिल पा रहा है। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या हम चाहेंगे। आज जनता को उसके पैसे मिल पा रहे हैं। 85 करोड़ रुपए की पेमेंट अभी तक हमारी केंद्र सरकार के वित्त विभाग और इन बैंकों के माध्यम से लोगों को मिली है और दिल्ली सरकार भी 100% इस पॉलिसी के तहत काम करते हुए जहां जहां दिल्ली के लोगों का पैसा है बैंकों के साथ मिलकर के हम कैंप लगाएंगे और जनता को उनके हित का, उनके हक का ये पैसा देंगे हम।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये शिविर दिल्ली के हर जिले में लगाया गया है। साथ ही हर कैंप में विशेष सहायता केंद्र भी स्थापित किया गया है जहां लोग डिजिटल माध्यम से अपनी अघोषित राशि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
डिजिटल पेमेंट्स को अपने जीवन का हिस्सा बनाना ये एक बहुत बड़ा चेंज है भारत की इकोनॉमी में। अनक्लेम एसेट को लोगों तक वापस पहुंचाना कि आपका एक भी रुपया जहां कहीं भी खातों में है वो आप तक वापस पहुंचेगा, इसमें सरकार की नीति और नियत पूरी तरीके से स्पष्ट है।
दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में खादी के माध्यम से युवाओं को रोजगार, कौशल और आत्मनिर्भरता का नया आयाम मिल रहा है। श्री सिरसा ने बताया कि 50 करोड़ रुपए की नई पहल के तहत 13,900 से अधिक युवाओं को खादी, हथकरघा और कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से न केवल स्थानीय कारीगरों की मेहनत को सम्मान मिलेगा बल्कि खादी के पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय से वैश्विक पहचान भी मिलेगी। श्री सिरसा ने कहा कि खादी अब सिर्फ एक वस्त्र नहीं है बल्कि दिल्ली की शान, कारीगरों का सम्मान और युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार बनेगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने मेट्रो स्टेशनों पर इलेक्ट्रिक ऑटो की कनेक्टिविटी को बढ़ा दिया है। श्री सिरसा ने कहा कि इस निर्णय से लाखों यात्रियों को मजबूत लास्ट माइल कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये पहल न सिर्फ लोगों की यात्रा को और सुगम बनाती है बल्कि दिल्ली की हवा को भी साफ करने में मदद करती है।
दिल्ली के अंदर जितनी मेट्रो स्टेशन हैं, उनके ऊपर हमने अभी इलेक्ट्रिक ई ऑटो देखे आए, जो ऑटो भी चलते थे दिल्ली में उनको भी कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक ऑटो बनाया जाए, उसको पहले फेज में मेट्रो की लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए हमने शुरू किया।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के अनुसार वयस्कों में होने वाली मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी 50% से अधिक समस्याएं 14 वर्ष की उम्र में ही शुरू हो जाती हैं। एम्स नई दिल्ली के मनोरोग विभाग के प्रोफेसर डॉ राजेश सागर ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि इस आयु वर्ग के बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना बेहद जरूरी है। डॉ सागर ने कहा कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए खेलना और सक्रिय रहना अत्यंत आवश्यक है। आज के समय में शहरों में पार्कों और खुले स्थानों की कमी के कारण बच्चों की शारीरिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। डॉक्टर सागर ने बच्चों में मानसिक समस्याओं के शुरुआती लक्षणों की पहचान करने पर बल देते हुए कहा कि घर और स्कूल में सहायक और संवेदनशील वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अभिभावकों और शिक्षकों से आग्रह किया कि वे बच्चों के व्यवहार में हो रहे बदलावों को गंभीरता से लें और समय पर सहायता उपलब्ध कराएं।
कोई भी बदलाव, जैसे बच्चा सडनली विड्रॉन हो गया है, चुप चुप हो गया है, घर से बाहर नहीं जा रहा, मिलना नहीं चाह रहा है, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम है जो कि टीचर भी पहचान सकती है और घर में पेरेंट भी पहचान सकते हैं, बिकॉज उन्होंने बच्चे को देखा हुआ है, नंबर वन। नंबर टू है इमोशनल सिम्टम, या बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो गया, बहुत गुस्से में है बिना बात के, तो वो बिहेवियर हो गया, या बिल्कुल खामोश हो गया है, उदास होने लगा है, बिना बात के रोने लगा है, या सेल्फ हार्म के आइडियाज एक्सप्रेस करने लगा है, कहने लगा है कि जीवन में कुछ नहीं है, या उसमें सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी उसको आने लगे हैं, या उसको उदासी के सिम्टम्स आ गए हैं, तो मल्टीपल सोमैटिक कंप्लेन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो ये सब जो बिहेवियर में चेंज है, तो उसका ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट का जरूरी नहीं है कि दवाई है, दवा के अलावा भी कई प्रकार का ट्रीटमेंट होता है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज 9वीं अपर यमुना रिवर बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर दिल्ली के जल मंत्री परवेश साहिब सिंह भी मौजूद थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान राजधानी के जल से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष बल दिया गया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली को उसका न्याय संगत जल आवंटन सुनिश्चित करने, अंतर्राज्यीय समन्वय को और अधिक प्रभावी बनाने तथा यमुना जल प्रबंधन को अधिक कुशल और परिणामकारी बनाने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। श्री परवेश साहिब सिंह ने जानकारी दी कि इस बैठक में दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान के जल तथा सिंचाई मंत्री भी उपस्थित रहे। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने आज आवासीय और व्यावसायिक इलाकों में विशेष सफाई अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पालिका परिषद ने हर जगह 8 पालिका सहायकों को तैनात किया। इन सहायकों द्वारा काका नगर आवासीय कॉलोनी सहित कनॉट प्लेस के अलग अलग स्थानों की गहन सफाई की गई। इसके अलावा सफाई के लिए सहायकों को कचरा इकट्ठा करने और फेंकने में मदद के लिए ट्रॉलियां भी उपलब्ध कराई गई। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आज नई दिल्ली में समापन हो गया। इस वर्ष मेले का विषय था एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मेले में अखंड भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक मजबूती को भी दर्शाया गया।
इस वर्ष भारत मंडपम में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की धूम पूरे राष्ट्रीय राजधानी में देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोग, उद्यमी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि प्रदर्शनी हॉल में पहुंचे। 14 दिन के इस आयोजन में भारत के विभिन्न राज्यों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत देखने को मिली। इस वर्ष के आयोजन के लिए बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य थे, जबकि झारखंड फोकस राज्य था। लगभग 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 60 से अधिक मंत्रालयों ने मेले में भाग लिया। आयुष, खान, MSME और रक्षा मंत्रालय सहित विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों के मंडपों और स्टॉलों ने आगंतुकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मेले का एक मुख्य आकर्षण डिजिटल इंडिया मंडप था, जिसमें देश की डिजिटल परिवर्तन यात्रा को प्रदर्शित किया गया था। शिवांग की रिपोर्ट के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार के लिए नई दिल्ली से।
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से दिव्यांगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी से निपटने के लिए कड़े कानून बनाने पर विचार करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र से दिव्यांगों और दुर्लभ अनुवांशिक विकारों से ग्रस्त व्यक्तियों का उपहास करने वाली अपमानजनक टिप्पणियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम की तर्ज पर दंडनीय अपराध बनाने के लिए एक कानून बनाने को कहा है। एक रिपोर्ट।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभद्र, आपत्तिजनक और अवैध सामग्री को नियंत्रित करने के लिए एक तटस्थ, स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय की आवश्यकता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस बारे में पीठ को सूचित किया कि सरकार इस बारे में दिशा निर्देश बनाने पर विचार कर रही है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हास्य किसी की गरिमा की कीमत पर नहीं हो सकता। न्यायालय SMA क्योर फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ये संस्था दुर्लभ स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए काम करती है। याचिका में इंडियाज गॉट लेटेंट के होस्ट समय रैना और सोशल मीडिया पर प्रभावशाली लोगों विपिन गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर की चुटकुलों की निंदा की गई थी। अदालत ने इन लोगों को भविष्य में अपने आचरण के प्रति सावधान रहने का निर्देश दिया। पीठ ने हास्य कलाकार रैना और अन्य लोगों को दिव्यांग व्यक्तियों, विशेष रूप से स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए धन जुटाने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों की सफलता की कहानियों पर प्रत्येक माह 2 कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्देश दिया। आनंद की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट मामले में एक गिरोह का भंडाफोड़ कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने एक ही व्यक्ति से 23 अलग अलग खातों के माध्यम से लगभग 43 लाख रुपए की ठगी की। पुलिस ने इन आरोपियों से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड जब्त किए। मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हॉक की मदद से गैर कानूनी मोबाइल बनाने वाली इकाई का भंडाफोड़ कर 5 आरोपियों को करोलबाग क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पुराने मोबाइलों को खरीदकर उसके IMEI संख्या को छेड़छाड़ कर उन मोबाइलों को स्थानीय बाजार में अलग अलग तरीकों से बेचते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 826 मोबाइल फोन, IMEI संख्या बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक लैपटॉप और हजारों मोबाइल उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि इस मामले में आगे की जांच जारी है। नई दिल्ली में महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग की नीलामी में दीप्ति शर्मा सबसे महंगी खिलाड़ी बनी। एक रिपोर्ट।
भारत को विश्व कप जिताने वाली दीप्ति शर्मा को नीलामी में यूपी वॉरियर्स ने राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करके 3,20,00,000 रुपए की बड़ी कीमत में खरीदा है। अनुभवी खिलाड़ी शिखा पांडे को भी यूपी ने 2,20,00,000 रुपए में खरीदा। श्री चरणी को दिल्ली कैपिटल्स ने 1,30,00,000 रुपए में खरीदा है। मुंबई इंडियंस ने पिछले साल संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली न्यूजीलैंड की हरफन मौला एमेलिया केर को 3,00,00,000 रुपए में खरीदा है। ऑस्ट्रेलिया की मैग लेनिंग को यूपी वॉरियर्स ने 1,90,00,000 रुपए में, जबकि न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन को गुजरात टाइटंस ने 2,00,00,000 रुपए में खरीदा। वॉरियर्स ने एक बार फिर राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करके इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एक्सेलेटन को 85,00,000 रुपए में खरीदा। दक्षिण अफ्रीका की सलामी बल्लेबाज लॉरा वोलवार्ट को दिल्ली कैपिटल्स ने 1,10,00,000 रुपए में खरीदा, जबकि गुजरात ने भारतीय तेज गेंदबाज रेणुका सिंह को 60,00,000 रुपए में खरीदा। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली को कोई खरीदार नहीं मिला। समाचार के लिए विशाल शर्मा।
राजधानी में आज दिन में मौसम सामान्य रहा, हालांकि शाम के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजधानी में वायु गुणवत्ता की स्थिति बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के विशेष शिविर का शुभारंभ किया। उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, राष्ट्रीय राजधानी में खादी के माध्यम से युवाओं को रोजगार, कौशल और आत्मनिर्भरता का नया आयाम मिल रहा है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट मामले में एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आज नई दिल्ली में समापन और सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से दिव्यांगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी से निपटने के लिए कड़े कानून बनाने को कहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।